सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी हितेशी शुद्धात्म में नित्य हितो ग्रीष्म ऋतु में जल सयानी पूजो ज्ञान पानी पूजो की सतत केवल ज्ञान पानी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
केवल परम पूजा श्री क्षमा सागर जी महाराज की, भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
हम लोग हमेशा की तरह आज भी बनने वाले कर्मों को कैसे बांधें और जो कर्म उदय में आ जाते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार क्या हो, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। हमने पिछले दिनों ये बात सीखी, समझी है और हमारे अनुभव में भी आई है कि यदि हम एक बार ऐसा आत्मविश्वास अपने भीतर पैदा कर लें कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने मन वाणी और शरीर की क्रियाओं पर अंकुश रख लेना है या उनको एक दिशा देनी है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन को अच्छा ना बना सकें। मैं सुबह सोच रहा था कि मैं बार बार पुरुषार्थ की बात करता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सब लोग पुरुषार्थवादी होने से काम चलेगा, न कर्मवादी होने से काम चलेगा, न पुरुषार्थवादी होने से काम चलेगा। जो चीज जैसी है उसे वैसा ही समझने, वैसा ही मानने और वैसा ही अनुभव करने से काम चलेगा। भगवान ने हमें यहां भेजा है, वे हमसे जो करवाना चाहें वो करवाएंगे और जब हमें यहां से बुलाना चाहेंगे बुला लेंगे। ऐसी मान्यता कहलाती है ईश्वरवाद की, ये ईश्वरवादी मान्यता है। हमारे कर्मों में जो लिखा होगा सो वो होगा, हमारे जैसे हो रहा हो सो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा, आने जैसे उन्होंने हुई है सो हमारे कर्मों को खेल है, ऐसा मानना ये कर्मवादी दृष्टिकोण है, ध्यान रखना। और हमारे बस में सब कुछ है, हम जो चाहें वो कर सकत, हमें जब मरने हुई है जब मर हैं जितने बिना जीने हुई है सो हम जी सकत, ऐसा अहंकार करके ना ये कहलाता है पुरुषार्थवादी दृष्टिकोण। हम इसमें से तीनों नहीं है, ना हम ईश्वरवादी है, ना हम कर्मवादी है, ना हम पुरुषार्थवादी है। जो कार्य बुद्धिपूर्वक होता है उसमें हमारा पुरुषार्थ है और जिसमें हमारी बुद्धि काम नहीं देती, जो अपने आप होता है वहां हमारा पुरुषार्थ नहीं, वहां हमारा भाग्य है, वहां हमारे कर्म है, वहां हमें मिलने वाली कृपा है लोगों की। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे कि दवाई डॉक्टर दे सकता है, हम जैसी कहीं वैसी खाक सकते हैं, लेकिन दवाई भीतर कैसा फंक्शन करेगी इस पर हमारा रस नहीं है। हम दाल चावल मिला के खिचड़ी बनाने के लिए तवेली में रख करके पानी डाल करके अग्नि पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें हम हाथ डाल के ही बैठ जाए तब भी पांच मिनट में नहीं पकेगी वो, तो जितनी देर में जैसे पकना होगी वैसे पकेगी, अब हमारा उसमें वश नहीं है। हमारा वश है दाल चावल मिला के पानी मिला के मात्रा में और अग्नि पर रखना, यहां तक हमारा पुरुषार्थ है। इसके बाद नहीं है, अब इसके बाद रो नहीं सकते आपके खीर का नहीं बनी।
हम भगवान को नहीं मानते ऐसा नहीं, हम कर्म को नहीं मानते ऐसा नहीं, हम पुरुषार्थ को नहीं मानते ऐसा भी नहीं है। लेकिन जिसका जितना रोल है हमारे अपने जीवन में वही उतना ही हम मानते हैं। भगवान की भक्ति से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, तो भगवान हमारा कुछ नहीं करते बल्कि उनकी भक्ति से हम अपने परिणाम निर्मल करके अपने सो काम बना लेते हैं। पर कहेंगे यही कि भगवान की कृपा से बने, ये हमारी विनय है भगवान के प्रति, यही भगवान का काम है, इतने ही है, इससे ज्यादा काम नहीं है। मोरी तोतो से बनी ताते करत पुकार, ये भी कहेंगे और फिर बाद में ये भी कहेंगे कि मुझ कारज के कारण सु आप धूप में न रही हो कि आपको कन्ने कन्ने हम ही कौन अकेले आप बैठे रहो चुपचाप हम हाथ जुड़े आपके। हाँ, मुझ कारज के कारण सु आप कारण बनोगे, कारी तो मेरे भीतर होगा, उपादान तो मेरा है, आप निमित्त बनोगे, इतने ही है ईश्वर का रोल। और कर्म मेरे उदय में मैंने जो बांधे हैं वो अवश्य आएंगे, लेकिन उदय में आने पर वे मुझे जैसा मन चाहा फल देना चाहें तो मन चाहा फल नहीं दे सकते, मैं जैसा चाहूंगा वैसा फल लेऊंगा। मैं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को परिवर्तित करके अपने उदय में आने वाले कर्मों पर अंकुश लगा सकता हूं, मैं अपने कर्मों के उदय में शांत भी रह सकता हूं, मैं अपने दुख में भी प्रसन्न रह सकता हूं। और नहीं तो सुख में भी लोग अप्रसन्न रहते हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन हम कर्म सिद्धांत को समझ करके जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी दुख आएंगे तब भी हम प्रसन्न रह सकते हैं और हम सुख और दुख दोनों में समता भी धारण कर सकते हैं, ये हमारा हम कर्म से ऊपर हैं। ये हमारे जीवन में कर्म का महत्व है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हमने यही कहा कि जितनी हमारी अप्रोच है, जितनी हमारी बुद्धि है, जहां तक हम सक्षम हैं वहां तक अपना पुरुषार्थ करेंगे, उसके बाद नहीं, उसके बाद हमारी अपनी लिमिट है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति किसी को मदद कर सकता है लेकिन सुख और दुख दे नहीं सकता। हम दूसरे को मदद करें वो सुखी हो या ना हो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी, हम सिर्फ निमित्त बन सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थवादी बन के अहंकार भी नहीं करना कि मैं सारा कुछ कर सकता हूं, नहीं, वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता के अनुरूप होता है। इस तरह ये तीनों चीजें व्यवस्थित हमारे मन में रहनी चाहिए। सुबह विचार आया मेरे मन में कि ऐसा ना हो कि बहुत अधिक पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं, हर बार कहता हूं कि अपने परिणाम अपन को संभालना चाहिए, अपने हाथ में है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती कि हमारे हाथ में नहीं रहता है, फिर हमारे परिणाम हमारे कर्मों से प्रेरित होते हैं। तो जहां हमारी बुद्धि नहीं चलती, जहां तक हमारी बुद्धि चलती वहां तक तो हम करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम छोड़ देंगे, फिर अपन कहते भगवान भरोसे, भैया अब जो कछु होने हो सो ठीक, हम तैयार हैं उसके लिए। जैसे कोई ज्योतिषी कह देवे कि आपके साथ ये ऐसी स्थिति होने वाली है तो हम क्या करेंगे, दो स्थितियां बनती हैं, कि तो हम पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं हम नहीं होने देंगे, और या फिर हम दीनहीन दुखी होकर के बैठ जाएंगे कि ये भैया सो हो वारो है, सो पहले से ही मर भी से पहले ही मर गए, उनने कही थी दो दिन बाद मरो जी, आज ही से मर गए कि अब मन नहीं है दो दिन बाद, ऐसा नहीं। उस ज्योतिषी के उस कहने से हम अपनी तैयारी कर लेंगे कि अगर दो दिन मरण के शेष रह गए हैं तो मैं उन दो दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे कि मैंने जीवन भर नहीं जी पाया होगा, इतने अच्छे ढंग से मैं जीऊंगा, और मैं अपने इस मरण को टाल नहीं सकता इसलिए टालने का अहंकार नहीं करूंगा। तीर्थंकर भी आ जाए तो आयु बढ़ा नहीं सकते हैं और घटा भी कोई नहीं सकता है, ये हमें विश्वास है, घटती है हमारे अपने परिणामों से। हाँ, ये चीज भी ध्यान रखना, लेकिन बढ़ती नहीं है वो, तो जितनी हम बांध के आयु लाए हैं उतनी ही मिलेगी, उसमें बढ़ाई नहीं जा सकती है। हाँ, अपने किसी कहना चाहिए गलत कारी से उसे घटाई जा सकती, जिसमें कि मुझे आज थोड़ा सा आयु कर्म के बंध की बात तो अपने कर ली थी, लेकिन ये जो अपन आयु बांध लेते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं, पर घटा बड़ी जरूर कर लेते हैं। जितने समय की आयु बांधते हैं वो पूरी की पूरी आयु तो कोई नहीं भोग पाता, ध्यान रखना। 80 साल की बांध क्या है, 75 साल में हो जाएगा हिसाब, 2-5 साल कम हो ही जाती है। आज साइंस भी कह रही है कि लगातार अगर आप किसी एरोड्रम के आसपास अपना घर बना के रखेंगे तो इतनी अधिक भीषण आवाज के बीच जितनी ओरिजिनल आई है उससे 10 बरस तो कम कर लेना। अगर आप किसी चौराहे पर अपना घर बना के रह रहे हैं जहां से आवक जावक गाड़ियों की बहुत है तो 5 साल कम कर लेना। वो लिखते हैं कि अगर आप टाइप राइटिंग की दुकान के बाजू में रहते हैं टाइपिस्ट के तो 3 साल अपनी उम्र में से कम कर लेना ओरिजिनल में से। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें उदीर्णा होती रहती है, संक्लेश अधिक करने वाले की आयु कम हो जाती है। जिसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता, जिसको पोषक तत्व पूरे नहीं मिलते हैं खाने पीने के लिए, कुपोषण करता है उसकी आयु की उदीर्णा होती है। जिसको हमेशा रोग बना रहता है उसकी आयु की उदीर्णा भी होती है। अगर वो उस रोग में संक्लेश करेगा तो, और रोग को शांति से झेलेगा तो कोई आयु का कम नहीं होगी। जितना संक्लेश अनीति करेगा, हाँ नीति न्यायपूर्वक नहीं चलेगा, अनीति करेगा तो हमेशा भय बना रहेगा, हमेशा भय बना रहेगा, उससे आयु कम हो जाएगी। ये सब अकाल में आयु के क्षरण होने के निमित्त हैं। इन निमित्तों से हमारी आयु समय से पहले अब फल देकर के चली जाती है। और अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, विस्वक्षण कर लेबे कोई, या कि गाड़ी के नीचे आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए कोई, तो उस समय तो जितनी आयु अपनी बंधी रहती, 60 साल की बंधी है, 40 साल में एक्सीडेंट हुआ तो पूरी 60 की उसी समय नष्ट हो जाएगी। आयु की कई लोग ये सोचते हैं कि वो 20 साल कहां गए, 20 साल भटकना पड़ेगा, भटकना डगना नहीं पड़ता है। 40 साल में आपने 20 साल और उसी में ऐड करके उसको भी भोग लिया, वो तुरंत खत्म हो जाती। जैसे कि एक पेट्रोमैक्स में आपने 1 घंटे जलने लायक तेल भरा था लेकिन बर्नर लीक कर गया, 55 मिनट जला वो 1 घंटे जलने वाला तेल 55 मिनट में खत्म हो गया। और हो सकता है कि अगर बर्नर ब्लास्ट हो गया तो 1 घंटे जलने वाला तेल 5 मिनट में जल के फक सब खत्म हो जाए। ऐसे ही आयु बंधी रहती है अपने अंदर 60 साल के निशे के अगर ये ठीक रहेगा तो एक निशे का अपना समय पूरा करके निकल रहे हैं, और नहीं तो झटके के साथ निकल करके सब नष्ट हो जाएंगे। नई आयु बांधे बिना जीव यहां से कहीं नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना। इसलिए जैसे ही मरण होता है आयु बंध जाती है, आयु बंधने के बाद फिर अकाल में मरण नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। ये कुछ नियम है। अगर किसी की आयु, और आयु बंधने के हमेशा अवसर नहीं होते, जीवन में 8 अवसर आते हैं, 2/3 आयु निकलने पर पहला अवसर आता है। मान लो बांध हमारी अपनी आयु हम लेके आए हैं 81 बरस की, तो 54 वर्ष में पहला मौका आएगा आयु बंधने का। फिर बचे 27 साल, तो उसमें से भी 18 निकल जाएंगे तब दूसरा मौका आएगा। कुल 9 वर्ष बचे हैं जीवन के शेष, दूसरा मौका। फिर 9 में से भी 6 निकल गए, तीसरा मौका। फिर बचे 3, 3 में से भी 2 निकल गए, चौथा मौका आ गया। बचा 1 साल, 80 साल के हो गए और 4 मौके निकल गए आयु बंध के। अगर 4ों में से किसी में नहीं बंधी तो फिर 1 साल में से मोटा हिसाब है 8 महीने निकल गए, तब 5वां मौका आया, फिर भी नहीं बची बंधी, तब 4 महीने रह गए, उसमें से भी 3 निकल गए, 6वां मौका आया, 1 महीना शेष रहा है जीवन का। अब 6वें मौके पे भी आयु नहीं बंधी अगर, तो 1 महीने से भी मोटा हिसाब है 20 दिन और निकल गए, 10 दिन बचे हैं जीवन के। 7वां मौका फिर भी नहीं बंधी तो 10 दिन में से भी 6 दिन निकल गए, 8वां मौका, आयु के सारे मौके खत्म, आयु नहीं बंधी तो 1 आवली और 1 समय, बहुत थोड़ा सा समय होता है। आयु का शेष रहने पर, मरण का शेष रहने पर आयु बंध जाती है, ये आयु बंध की प्रक्रिया है। तो क्या करना, किसी भी समय बन सकती, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कितनी आयु लेके आए। ये तो हमने हिसाब बता दिया 81 का, लेकिन क्या पता 81 है कि 50 है, वो कब आएगा मौका। इसलिए हमेशा सावधानी रखने का काम है, परिणाम हमेशा अपने संभले रहे, किसी भी क्षण आयु बन सकती है। और आयु में हम अपने उदीर्णा करवा सकते हैं दूसरे के भी। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, हम दूसरे के सुख दुख में भी निमित्त बनते हैं, दूसरे के जन्म मरण में भी निमित्त बनते हैं। हमारे जन्म में हमारे माता पिता निमित्त बने कि नहीं बने, आपके सबके जन्म में, हम सबके जन्म में माता पिता निमित्त बने, मरण में भी निमित्त बन सकते हैं। हाँ, दूसरे को संक्लेश करवा दिया, कितनी सी बात कह दी थी देवों ने आकर के धोखे से, रामचंद्र जी नहीं रहे, लक्ष्मण जी इतना सुनते ही प्राणांत हो गया। बताइए आप, इतना प्रेम, परस्पर किसी का प्रेम है और किसी की झूठी खबर आपने दे दी, उसके संक्लेश पूर्वक हो सकता है कि प्राणांत भी हो जाए, आप उसके मरण में निमित्त बनेंगे। निमित्त सापेक्ष मरण को अकाल मरण कहते हैं। ये तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने लिखा। एक प्रक्रिया चल पड़ी है आजकल 50 साल से, उसमें ये सिद्ध किया जा रहा है कि अकाल मरण नहीं होता है। देखो तो भगवान ने जैसा देखा है वैसे ही सब होता है, इसलिए अकाल मरण नहीं होता। अब क्या कहें, बुद्धि की बलिहारी, आचारी भगवंत कह करके चले गए और जी अपनी उसमें एक नई बुद्धि लगा रहे हैं। ऐसी बुद्धि के कोशिश में नहीं आना, आचार्यों की वाणी पर विश्वास करना। जो निमित्त पूर्वक मरण होता है, हो सकता है कि खाट पे लेटे लेटे नीचे गिरे और मरण हो गया, संभव है कि वो उसी समय होना था, लेकिन कहने में क्या आएगा, न नीचे गिरते न मरते। एक सीढ़िया से भी नीचे गिरे, सीढ़िया निमित्त है। शांतिपूर्वक मरण नहीं हुआ है, अपनी जगह पर बैठे हुए आर्टरीज ब्लॉकेज हो गई, मरण हो गया। ब्रेन हैमरेज हो गया, मरण हो गया। एक्सीडेंट में मरण हो गया। इस सारे मरण को हम क्या कहेंगे, अकाल मरण। आचार्यों ने इसे अकाल मरण ही लिखा। निमित्त सापेक्ष मरण को अकाल मरण कहते हैं, और जो बिना किसी निमित्त के आयु के पूरे होने पर मरण होता है वो सकाल मरण कहलाता है। इसलिए आयु कर्म के बंध की प्रक्रिया में ये बात भी समझने की थी, वो भी अपन ने चर्चा कर ली। आज अपन देखते हैं कि ये जो शरीर हमारा बना हुआ है, इस शरीर के बनाने में कौन कौन से कर्म हम लेकर के आए थे। उसी तरह एक पूरा ब्लूप्रिंट रहता है हमारे अंदर, एक पूरी स्कीम होती है। जब हम मरण करके दूसरी जगह जाएंगे तो पूरी स्कीम आपके अपने साथ, पूरी प्लानिंग लेके जाएंगे। आंख का रंग कैसा वाला होगा, भूरे रंग की बनना है कि काले रंग की बनना है, कौन से कलर की व्हाइट बनना है, नीले रंग की आंख बननी है, सब कितने साइज की बननी, ये तक डिसाइड है। ऊपर की भौहें कितनी रहेंगी, ये भी डिसाइड करने वाला एक कर्म है। साइज शेप स्थान किस जगह लगेगी, यहां नहीं लगेगी, यहां लगेगी, ये किसने डिसाइड किया, ये कर्म डिसाइड करता है। और कर्म को कौन डिसाइड करता, हम डिसाइड करते हैं। हम खुद अपने कर्मों को ऐसे डिसाइड करते हैं, फिर कर्म हमारे पूरे शरीर की फॉर्मेशन। नाम कर्म है, 93 प्रकृतियां हैं। अच्छा स्वर मिला है तो भी सुस्वर नाम कर्म, ठीक स्वर नहीं मिला दुस्वर नाम कर्म। अस्थिर, जरा सा ठंड और गर्मी पड़ जाए व्याधि हो गई, अस्थिर नाम कर्म। कितनी ठंड गर्मी पड़ती जाए, पत्थर हजम वाला मामला, स्थिर नाम कर्म। बताइए आप, ये सब शरीर में किस तरह का कलर रहेगा, वर्ण, शरीर का अपना एक गंध है, हर एक के शरीर की अपनी। जैसे तीर्थंकरों के शरीर की बहुत सुंदर गंध होती, दूर से ही मालूम पड़ जाता कि तीर्थंकर आ रहे हैं, उनका अपना, उनके उनका अपना आभा मंडल। वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, हमारे बांधे हुए नाम कर्म, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। शरीर के अवयव बहुत सुंदर हैं, लेकिन सब लोग उससे घृणा कर सकते हैं, और शरीर के अवयव बिल्कुल सुंदर नहीं है और सब लोग उससे प्यार कर सकते हैं, ये सुभग और दुर्भग नाम कर्म। बताओ आप, सुभग नाम कर्म होगा जहां चला जाएगा सौभाग्य, और दुर्भग नाम कर्म होगा कितना ही बढ़िया सुंदर शरीर हो कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, कोई चाहने वाला नहीं, दुर्भग नाम कर्म। बताइए, ऐसे नाम कर्म हैं ये 93 प्रकृतियां हैं, कितनी सारी हम आपको बताएं। गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघा, संघनन, ये हड्डियों की ताकत, किस तरह की बाउंडेज होगी। अपन सबके बहुत हल्के से जोड़ हैं, वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है कि वज्र की हड्डियां हैं, उनके बीच जो शॉकअप लगा हुआ है जोड़ने के लिए वो भी वज्र का है। ऐसा शरीर मिले तो हनुमान जी जैसा पटक दो नीचे, तब भी चट्टान टूट जाएगी, शरीर नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ऐसा वज्र का शरीर, वो भी कर्म के उदय से मिलता। 6 प्रकार का सहनन है। संस्थान सुडोल, आचार्य श्री का देख लो, बिल्कुल प्रपोर्शनेट, वैसा और बहुत कम लोगों का देखने में आता है इतना प्रपोर्शनेट। सम चतुरस संस्थान, ऐसे 6 संस्थान, ये सब नाम कर्म। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपन को यह समझना है कि ये नाम कर्म बंधते कैसे, ये इनका काम क्या है, ये तो अपन फिर कभी किताब में से ही पढ़ लेना कि कितने प्रकार के नाम कर्म अपन बांधते अलग अलग। देखो, किसी का भी शरीर एक सा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। सबके मैं, सबने अपने अपने हिसाब से नाम कर्म बांधा, शुभ भी बांधते हैं अशुभ भी बांधते हैं। अशुभ नाम कर्म कैसे बंधता है इसके लिए सूत्र जी का एक सूत्र है, योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना। मन वचन काय की कुटिलता, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। और अगर इससे विपरीत मामला है तो मन में कुछ है, वचन में कुछ है, शरीर से कुछ और कर रहे हैं। ये जो कुटिलता है मन वचन काय की, या कि अपनी भाषा में कहें कि मन वचन काय जो मिले हैं उनका दुरुपयोग करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण। अगर अपना शरीर अच्छा नहीं मिला अपन को, तो अपन ने पूर्व जीवन में मन वचन काय की निर्मलता नहीं रखी होगी, कुटिलता रखी होगी, सरलता नहीं रही होगी, इसलिए ये ऐसा शरीर अपन को। और जिसको सुंदर शरीर मिला है उसने उस शरीर के लिए पहले मन वचन काय की सरलता रखी होगी। और इतना ही नहीं, सेवा करने से, मुनि जनों की त्यागी वृत्तियों की सेवा करने से वज्र का शरीर मिलता। हनुमान जी के जीवन में आता है कि उन्होंने पिछले जीवन में बहुत मुनि महाराजों की सेवा करी, उसके फलस्वरूप उनको। और अपन को ये जो सड़ा शरीर मिला, इससे अपन को क्या विचार करना चाहिए कि अपन हाँ ऐसे ही तो मिला, इससे काम ही नहीं कर पाते हैं। रू अन्न का कीड़ा है, भोजन दे दो तो थोड़ा काम करने लगता, नहीं तो दूसरे दिन ठप पड़ा हुआ है मामला। नहीं, रोज चाहिए, अन्न का कीड़ा है, रोज चाहिए उसको। आप दो चार दिन का सोचो कि अब नहीं खाने का है, कोई बेकार में रोज रोज खा रहे, काम नहीं चलेगा, उठो बैठ पे मुश्किल। ये ऐसा शरीर मिलना हमारे किसी पूर्व में किए हुए अशुभ कर्म का काम है, ये विचार करना चाहिए अपन को। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि आगे फिर मुझे आचार्य जो हमसे भैया वृत्ति नहीं करवाते, क्योंकि और संघ में तो महाराज जी वगैरह सब जो है, दो महाराज जी हमसे बड़े हैं, बाकी सब महाराज जी हमारे बाद के हैं, तो कोई हमसे भैया वृत्ति नहीं, पैर नहीं दबवाता। दो महाराज जी भी बहुत संकोच करते हैं, आचार्य भी कई बार जब भैया वृत्ति नहीं करवाते, पैर की पीछे कर लेते, तो हम धीरे से कहते कि वैसे ही तो सड़ो मिलो, और अब आपने करवाओ सो और खराब मिलो, अच्छा करो। सेवा करने से अच्छा शरीर मिलेगा, अपन सेवा नहीं करेंगे वो भी त्यागी वृत्ति की, ऐसे नहीं व्यसनी व्यक्ति की सेवा की नहीं कह रहे हम, रागी द्वेषी की सेवा की नहीं कह रहे। पिता के पैर दबाना चाहिए, मां की सेवा करना चाहिए, वो भी ठीक है, उनका उपकार है हमारे ऊपर, पर गुरुजनों की विशेष रूप से त्यागी वृत्ति की सेवा करना, हाँ ऐसा अकेला नहीं, आहार देना भी सेवा है, लेकिन उन पर जो भी विपत्ति आई उसको दूर करने का प्रयास करना, वो सब हमारे शुभ नाम कर्म के लिए बनेगा। अशुभ के लिए तो ये अगर हम नहीं करेंगे तो अशुभ ही नाम कर्म बंधने वाला। मन वचन काय का दुरुपयोग करेंगे, मन में मिथ्या विचार करना, मिथ्या वाणी बोलना, शरीर से हिंसा करना, ये सब चीजें अशुभ नाम कर्म के बंधने में कारण होती हैं। और उसमें सब कभी 93 प्रकृतियां आपको कुछ तो मैंने मुख तो बता दी, जिसमें कि अपन देखते हैं कई लोगों को जो है कितना उनका सौभाग्य, जहां चले जाते हैं वहां पर प्रशंसा भले कुछ भी ना हो फिर भी। और कुछ लोगों को अपन देखते हैं कि इतना बढ़िया सब रूप रंग है, सब कुछ फंस अवट करना, कूट मान तुलाकरण स्वर्ण मणि रत्न आदि अनुकृति, चीजों में मिलावट करने वाले को भी अशुभ नाम कर्म बंधेगा। अपन ने ऐसा करा होगा, अगर अपना अशुभ नाम कर्म है तो इसका करा होगा। और एक चीज और लिखी है, अंगोपांग च्यावन, दूसरे के अंग उपांग को भंग करना। ये जो इस तरह से बंदिया वगैरह करते ना, नाक कान छेद देते हैं, नथ नथ वो डाल देते, ये बच्चों के लिए नथनी पहना देता, वो नहीं, कान में बाली पहनते वो नहीं, वो तो श्रृंगार में शामिल है। वो नाक कान छेदना जैसे पशुओं के नहीं छेद देते और फिर उसमें वो नकेल डाल देते, उनको भारी कष्ट होता है, उससे उनको तो कष्ट होता ही, स्वयं को भी अशुभ नाम कर्म बंधेगा जो ऐसा करते हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। वर्ण रस गंध स्पर्श आदि को अन्यथा प्रवृत्त, एक ही ओर मिला दी, ओ की ओर मिला दी, गड्ढमड्ढ कर दिया। ये रूप रस गंध इत्यादि जितने भी हैं उनकी परस्पर में मिलावट करना, और बेचना, ये आज वर्तमान में जितना भी जो एडवर्टाइजिंग चल रहा है ना, वो आदमी को ब्लफ तो करते ही है। जितनी भी एडवर्टाइजिंग की जो साइकोलॉजी है कि कैसे आदमी अट्रैक्ट होगा उन चीजों से, उसको अट्रैक्ट करके और धोखा देना उसको। चीज तो अंदर कुछ है लेकिन बाहर से रैपर वगैरह इतना सुंदर लगा देंगे कि आदमी बुद्धू बन जाए। वो सब रूप रस गंध स्पर्श को बदल करके और आपने उसको बुद्धू बना दिया। आप अशुभ नाम कर्म बांधेंगे और यंत्र पिंजर इत्यादि क्रिया, चूहे की पिंजरा रख लिया, बिल्ली का पिंजरा रख लिया, जितने ये चिड़ियाघर देखने जाने वाले लोग हैं वे भी अशुभ नाम कर्म बांधते हैं, और जिनने चिड़ियाघर बनाया है वे तो बांधते ही हैं। ध्यान रखना, देखने जा रहे हम चिड़ियाघर, जू, ZOO जू है, जूलॉजी बना उसी से, प्राणी, प्राणियों को जहां कैद करके रखा जाए पिंजरे में और हम मजा ले रहे हैं, बेचारे भी दुखी हैं और हम उनको पिंजरे में रख रहे हैं, तोता को पाल रहे हैं पिंजरे में। हाँ, जितनी सब ये चीजें हैं सब अशुभ नाम कर्म के, विचार तो करना चाहिए। अज्ञानतावश अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज्ञान होने की बात तो बचना चाहिए भैया, इसलिए अपन विचार कर रहे हैं। और चैत्र प्रदेश गंध माल धूप आदि मोशनम, ये जानने योग्य चीज है, मंदिर के भूमि को दबा लेना, मंदिर की जमीन में अपना घर बना लेना, मंदिर की जमीन मकान किराए से लेके कम किराए में रहना, ये सब अशुभ नाम कर्म के कारण है। और जो द्रव्य थी, अरे इतनी महंगी द्रव्य धर गए जी, जा तो द्रव्य अपन ने चढ़ाओ, एकों बेच के दूसरी सस्ती ल्यान के धर दो, मालिकों को जाने हैं कौन को और जाने, ऐसा करके उस द्रव्य को हड़प लेना अशुभ नाम कर्म। बोली तो बोल दई, लोगों के बीच में ताली बजवा ली, प्रशंसा करवा ली, अब लटकाए हैं नहीं दे रहे, जितने दिन घर में रखेंगे उतने दिन तक अशुभ नाम कर्म का, उतने दिन तक रोज बंद था सुबह शाम 24 घंटे, ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है इसमें, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। देव धन और देव द्रव्य, देव द्रव्य जो है अष्ट द्रव्य है वो जो मंदिर में रखी रहती, और देव धन जो गुल्लक में डला रहता और जिसकी हम रसीद कटवाते, जिसकी हम बोली लेते, वो सब देव धन है। बोलने के बाद वो देव धन हो गया, 1 लाख की बोली ली देव धन हो गया, अब वो घर में रखा हुआ है, अब वो देव धन है, अब जितने दिन तक घर में रखा हुआ है वो हमारे लिए अब उपयोग में नहीं लेना चाहिए, रखा भले ही हो 4 दिन बाद देंगे तो 4 दिन की और पैसा जोड़ के देंगे, क्योंकि 4 दिन तक हम रखे रहे, वो 400 दिन रखे रहे तो उतने पैसा जोड़ के देंगे, उसमें कम नहीं देंगे। और देव क्यों, जब बोले से तुरंत दे दें, होना तो यह चाहिए, नहीं तो ये सब उतने दिन तक अशुभ नाम कर्म, रुकता नहीं है इसमें, ये लिखा। और इतने ही नहीं, इष्टी पाप, इस कल हमने जो कहा था इष्टी का पाप, दावाग्नि प्रयोग, जितने भी ये काम है, ईंट के भट्टे लगवाना या कि जंगल जलवा करके कोयला बनाना, आतिशबाजी का धंधा करना, ये सब भी अशुभ नाम कर्म, पाप कर्म उपजीवना, अपनी आजीविका पाप कर्मों के द्वारा चला रहे, पोल्ट्री फार्म, फिश फार्मिंग, ये सब जितने भी हैं सबसे अशुभ नाम कर्म। अभी आगे और आएगा, इनसे अंतरायु बनता है और इनसे नरकायु बनती है, एक साथ इतना मामला है, नरकायु में भी यही कारण है, अशुभ नाम कर्म में भी, आगे आने वाले अंतराय नाम कर, अंतराय कर्म में भी ये सब कारण है, इन पर बहुत विचार कर लेना चाहिए। और प्रतिमा आयतन प्रतिशय आराम उद्यान आदि विनाशनम, उद्यान इत्यादि को मिटवा दिया, और जहां पर लोग शांति से बैठते थे उस स्थान को मिटवा दिया, जहां पर चैत्यालय है, प्रतिमा जी रखी हैं, उसको मिटवा देना, ये सब चीजें जो है वो अशुभ नाम कर्म के बंद का कारण, डरते रहना चाहिए भैया, इसलिए इन चीजों को जान करके हम पहले नई मूर्ति का करना, इतनी तो मूर्तियां हैं ऐसा कह देते थे पहले, काजी पंच के लनक बार 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 कर रहे, कर्म कांड में लिखा हुआ है कि जो नई प्रतिमा और नए बनने वाले मंदिर का विरोध करता है स्वप्न में भी, उसके अशुभ नाम कर्म के साथ साथ मिथ्यात्व का बंध भी होता है। कभी भी नहीं मन में विचार लाना, खूब बनाओ और श्री जी विराजमान करो और बढ़िया मंदिर। क्यों, 5 स्टार होटल बन रही है, कोई कुछ नहीं कह पा रहा, उसमें सिवाय पाप के कुछ नहीं होना, लेकिन मंदिर में तो धर्म ध्यान होगा। पता नहीं कौन सी मूर्ति से किसको सम्यक दर्शन हो जावे, कोई ठेका नहीं है कि ऐसा ही मूर्ति से होगा। दूसरी ले आए थे छोटी सी, उसको देखते ही साथ, अरे वाह क्या वीतराग मुद्रा है, हो गया सम्यक दर्शन। हाँ, किसको हो जाएगा कह नहीं सकते, इसलिए कभी भी प्रतिमा का, इसलिए पुराने लोग अभी भी कहते कि एक अंगुल की प्रतिमा भी अपनी तरफ से रखो तो बहुत बड़ा पुण्य है। क्यों कहते थे, यही कारण था कि वो सम्यक दर्शन में निमित्त, देव जिन बिंब सम्यक दर्शन में निमित्त, इसलिए उसका निषेध नहीं करना मंदिर का कभी भी। हमें तो ईमानदार वालों से बुराई है, हम तो ईमानदार में जय हैं, इन्हें बे तो जैसे हैं सो हैं, अब तुम अशुभ नाम कर उन्हें बांधो खोटे। बट उनको आए कौन को भाव मंदिर, भगवान को आए मंदिर और को नहीं मंदिर। लेकिन ऐसा विचार अपने अंदर आ जाता है तो अपन जो है प्रतिमा और आयतन है, बताओ आप धर्म का आयतन है, उस आयतन की निंदा कर रहे हैं आप, उस आयतन को बुरा कह रहे हैं आप, वहां जाने से आप रोक रहे हैं, तो मानिएगा कि आप अशुभ नाम कर्म का, और अंतराय का भी यही कारण है, अंतराय भी बंधेगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता, अपने परिणाम अज्ञानतावश अपन बहुत खोटे कर लेते हैं, जिससे अपन ही अपने लिए कर्म बांध लेते, फिर बाद में रोते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था और हमें ये कौन से कर्म का फल मिल रहा है भैया। इसलिए क्यों ना अपन सावधानी रखें, बाद को जो है उस चीज को भोगना पड़े, इससे पहले ही हम सावधान हो जाएं, शुभ नाम कर्म का और समझ लें, फिर उसके बाद 16 कारण भावनाएं आने वाली हैं, वो अपन खूब आराम से उनको समझेंगे। 16 कारण भावनाएं कई लोग करते भी हैं, और 16 कारण भावना से तो तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है। एक नाम कर्म है, सारे 93 में सबसे श्रेष्ठ नाम कर्म का बंध है तो तीर्थंकर नाम कर्म। विरले लोगों को बनता है, सबके लिए तो संभव ही नहीं है, उसकी अपन बाद में प्रक्रिया। पर शुभ नाम कर्म जो है ये तो अशुभ हो गया, कि जितनी हम मायाचारी करेंगे, जितना हम मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति करेंगे, वो सब हमारे अशुभ नाम कर्म में बंधने वाला। और जितनी धर्म क्रिया करेंगे, कहते धार्मिक जन दर्शन संभ्रम, धर्मात्मा को देख करके आदर का भाव आ जाना, धर्म स्थान को देख करके माथा झुक जाना, प्रतिमा जी को देख करके, मुनि महाराज को, शास्त्र जी को देख करके माथा झुक जाना, धर्म क्रिया में लगे रहना, धार्मिक जनों की हमेशा प्रशंसा, जहां बैठे होते धर्मात्मा की प्रशंसा कर रहे, ये सब शुभ नाम कर्म का, अपने अपना भला होने वाला। सद्भाव उपनयनम, सबके प्रति भला भाव रखना, सद्भाव रखना, संसरण भीरुता, हमें संसार के दुख ज्यादा न भोगने पड़े, जन्म मरण से हम कबे बच जावें, ऐसी भावना रखना, इससे शुभ नाम कर्म। अकेले भावना रखी से पैसा नहीं लग रहा हो, एक धीरा नहीं लग रहा, लेकिन मन में भाव क्या है, माला फिर रहे, क्यों फिर रहे, हमारे जन्म मरण की पीड़ा अनादि काल से भोग रहे, कैसे जे जन्म मरण से हम पार हुए भगवान, ऐसा हमारे कुछ चित्त में बात आ जावे कि जन्म मरण छूट जावे, बस ऐसे जो जन्म मरण से छूटने की भावना है, वो भी शुभ नाम कर्म। कर्म बनेंगे लेकिन भले बनेंगे, देखो कितना आनंद का सौदा है, कठिन सौदा नहीं है। प्रमाद वर्जन, हमेशा धर्म कार्य करने में उत्साह रहना, प्रमाद नहीं करना, कुछ लेशु अनादरा प्रमादा, जिसमें भला है उसको नहीं करना, यही तो प्रमाद है। प्रमाद का मतलब गाफिलता, आलस, मंदिर जावे में आलस, धर्म करवे में आलस, किताब पढ़वे में आलस, और बाकी प्रपंच करवे में। अबे कुहू की बुराई करने हो तो अच्छी आंख खोल के करें, दोस्त देखने हो तो बड़ी बड़ी आंखें, सबो से निमिलना, और अपने दोस्त देखने हो गए तो हाथी जैसी छोटी छोटी आंखें। उसमें लिखा है हाथी का इतना बड़ा शरीर रहता लेकिन आंखें तित्ती सी रहती, कहते ऐसे ही दोस्त देखने वाला का शरीर इतना बड़ा रहता लेकिन अपनी आंखें नीच ले दो, और दूसरे की खुर्दबीन लगा के देखेगा माइक्रोस्कोप में, दोष सदोष लिखा है उसमें आचार्यों ने, सदोष एव निमिल ना, हाथी के समान अपने दोस्त देखने के लिए आंख छोटी कर लेना और अजा करे, और दूसरे के दोस्त देखने के लिए आंखें फाड़ फाड़ करके देखना, अजा करे जागते हुए, कहते इससे अपना ही अहित होने वाला है, दूसरे का तो जैसा है सो है ही, प्रमाद नहीं करना धर्म कार्यों में। और संभेद चरित्र आदयः, असंभेद चरित्र आदयः, जो निर्विकल्प चारित्र का पालन, निर्दोष चारित्र का पालन करने से भी शुभ नाम कर्म बंधता है, अशुभ न बंधे इसका प्रयास करना चाहिए। जैसे मंदिर जा रहे, अब क्रिया तो शुभ है लेकिन भाव कैसे हैं कि हमें मंदिर में चार जने देखें तो धर्मात्मा समझेंगे, हमारी दुकान अच्छी चलेगी कि आदमी धर्मात्मा है, हमारे बच्चों को ब्याह अच्छी जगह हो जाए हमें धर्मात्मा जानेंगे लोग, तो इन भाव से मंदिर जा रहे तो भी अशुभ नाम कर्म बंधेगा क्योंकि मायाचारी है, है? दूसरे के लिए खूब पैसा दे रहे, मदद कर रहे, कैसे कि जी में जो ज्यादा पैसा पाके भ्रष्ट हो जावे। अब बताओ ऐसे खोटे भाव भी हो जाते कई लोगों के, और चलो आओ हम तुम्हें सिनेमा दिखा ले आए, हमारे पैसा से देख लियो ताकि वो पढ़ ना पाए। मायाचारी ज्ञानावरणी तो बंधेगा ही बंधेगा, साथ में अशुभ नाम कर्म भी बंधेगा। ये बहुत सारे मन वचन काय की जो दुष्प्रवृत्ति है कि क्रिया कुछ करते हैं मन में कुछ और भाव रहता, वाणी कुछ और बोलते हैं मन में कुछ और छल का भाव रहता, इससे अशुभ नाम कर्म बनता। कोल्हापुर के एक राजा थे, हैं उनकी घटना सुनाई देते हम और बस हो गया टाइम 9:35। क्या हुआ कि वो कोल्हापुर के राजा बहुत वृद्ध हो गए, उनका लगभग समझ लो कि मरण माने कुछ दिनों में हो जाएगा ऐसा सब में खबर थी। एक चंदन बेचने वाला व्यापारी था, उसका चंदन बहुत रखा हुआ था स्टॉक में, उसके मन में भाव आता था कि अब बस जितनी जल्दी राजा को हो जाए काम सो अपनी चंदन ठिकाने लग जाए, उसके मन में ऐसा भाव आता था। अब किसी को नहीं मालूम भाव तो है उसके अंदर का, भाव को कौन पहचान के आया भाई। एक बार की बात है कि राजा जो है महल में रहते रहते थोड़े उकता गए, उनने कहा चलो अपन घूम करके आते हैं, तो उस चंदन वाले व्यापारी की दुकान के सामने से निकले तो उसको देख करके राजा को बड़ा संक्लेश हुआ, उसको देखने अकेले से और मन में बड़ा खोटा भाव आया, यहां तक भाव आया कि उस चंदन के व्यापारी को फांसी दे दे। अरे अपने परिणाम से राजा बहुत दुखी, मंत्री से कहा कि मंत्री जी उस रास्ते से जब जब भी मुझे तुम ले जाते हो उस व्यापारी को देख करके मेरे मन में बड़े खोटे भाव आते, मेरा अंत तो निकट है और मैं धर्म करना चाहता हूं लेकिन मेरे परिणाम खराब हो जाते। मंत्री ने कहा कि आपके परिणाम कैसे, आपकी कोई उससे बात हुई? कह ले कोई बात नहीं, मैं तो कोई जानता नहीं, मेरे देश का व्यापारी है, मेरा तो उसके प्रति व्यापारी के प्रति तो प्रेम ही है, लेकिन उसको देख करके और मेरे मन में बड़ा भाव खराब होता है। मंत्री ने पता किया, मंत्री गया दुकान पर, क्यों भाई कैसा चल रहा है? अरे कह रहे अब ठीक है, बहुत स्टॉक हो गया है चंदन का, कोई अवसर ही नहीं मिलता है कि कोई ले इसको, बड़े बड़े लोग ही ले सकते हैं, राजा जैसे लोग ले सकते और कौन ले सकता है। बस मंत्री जी को चीज मालूम पड़ गई, मंत्री जी ने आकर के राजा से कहा कि आपका दोष नहीं है, आपके परिणाम खराब होते थे क्योंकि उस सामने वाले के आपके प्रति परिणाम खोटे थे, वो रोज आपके मरण का भाव करता है कि आज मर जावे तो आज हमारो चंदन बिक जाए, अब आज नहीं मरे तो भयाने तो मरे ही जे हैं सो चंदन हमारा बिक जाएगा, इसलिए आपके परिणाम। तो राजा ने कहा क्या उपाय है? कहते सारा चंदन खरीद लो उसका आपके मरने से पहले ही, सो कम से कम मरने की। और वाकई ऐसा हुआ, पता नहीं कोल्हापुर के राजा की बहुत पुरानी घटना हो, सही घटना रही होगी, इसमें कहीं कोई वैसा नहीं लगता, बहुत बड़ी चीज नहीं लगती, और राजा ने पूरा चंदन खरीदवा लिया, फिर जब जब भी उसकी दुकान के सामने से निकले उनके परिणाम कभी खराब नहीं हुए जो चार दिन तक खराब होते थे, क्योंकि अब सामने वाले के परिणाम, उसका तो चंदन बेचना था उसका सो बिक गया, अब वो राजा की प्रशंसा करता कि देखो राजा कितना दयालु है, मेरा सारा चंदन खरीद लिया पहले से ही, अब तो खूब जिए राजन, हमें कोई उसकी वो नहीं है, जुग जुग जिए दीर्घायु हुए राजा। देखो ऐसे परिणाम जो है अपन अपने कुटिल परिणाम कर लेते हैं तो उससे अशुभ नाम कर्म बनता है, और भले परिणाम सबके प्रति अच्छे परिणाम रखें तो अपना ही लाभ है उसमें, ऐसा विचार करके और अपन को अपने परिणामों को संभालना चाहिए। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बहुबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, सम की अविनश्वर मणिया के शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, मिथ्या तमनास वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो मानु सेवकानी गें, वेखो जीवों के जताए वेखो पवन सताए वेखो भव्य उरे आनी है, वाणी के जानते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होंदो, ये दिन वाणी भारती तुम जपो दे रैन जो तेरो शरणागे सो पावे सुख चैन, कुले जिन ग्रहे मुनि राज महम
श्री महाराज के पावन पुण्य चरणों में अनल पर प्राप्त है।